Hi Dave, and welcome to How's the Josh Season 2, your unbounded dose of Josh in association with Panout Media. Kaise ho aap, Dave?
मैं एकदम बढ़िया हूँ ओमकार, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. एंड आज हम बात कर रहे हैं, सो आई एम सो एक्साइटेड.
यस, लाइक इट्स डेफिनेटली अ प्लेजर, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट यू नो कि आपने हाँ की एंड यू आर देयर ऑन दिस शो.
अरे, सो स्वीट ऑफ यू.
एंड देव, मैं क्या कहूँ कि राइट फ्रॉम कुली नंबर वन, पति पत्नी, वो भागी थ्री, छिछोरे, जबरिया जोड़ी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, सिम्बा, केदारनाथ, लव यात्री, बधाई हो, लैला मजनू, आई मीन लिस्ट इज नेवर एंडिंग. तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि इसके पीछे की ताकत और राज क्या है. अपनी सारी इस हिट फिल्मों में आपने गाने गाए हैं, यू हैव गिवन योर वॉइस फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल हिट फिल्म्स. तो टेल अस कि इसके पीछे की ताकत और राज क्या है, देव.
I can't say anything about it because you know there's something called God, and जब वो मेहरबान होता है तो कुछ भी होता है, but उसमें इंसान को खुद की मेहनत भी करनी पड़ती है. जो मैं इतने सालों से actually मैंने 2006 में मैं अपना घर छोड़ के स्कूलिंग करने के बाद जलंधर गया, वहां से मैंने एजुकेशन ली. देन 2010 में मैं मुंबई आया. उसके बाद काफी सालों के संघर्ष के बाद मुझे एक छोटी सी पिक्चर में गाने का मौका मिला, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस. एंड देन फाइनली 2017 में बद्री की दुल्हनिया आया, वहां से लाइफ मेरी चेंज हुई. उसके बाद हिट पे हिट, हिट पे हिट, टच उड मेरे आते रहे, स्वीटी तेरा ड्रामा, स्वीट हार्ट, एंड द मार्शमेलो वाला थिंग, यू नो, माय फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एंड थ्रू प्रीतम दा. तो इससे बड़ी बात, मेरे से ज्यादा लक्की इंसान कौन होगा कि मेरे साथ इतना अच्छा हुआ. बट मैंने अपनी मेहनत को, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते थे, बट उस टाइम पे अपने आप को हैंडल करना, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मोरली है, चाहे वो इमोशनली है, उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना, वो एक खुद में चैलेंज होता है, क्योंकि एक लंबी जर्नी हो जाती है ये. और जब फाइनली भगवान देता है तो फिर वो छप्पर फाड़ के देता है. इन माय केस मेरे साथ ऐसा ही हुआ.
राइट.
और तेरी भाभी सॉन्ग इज
नहीं प्लीज कंटिन्यू.
तेरी भाभी, हाँ, तेरी भाभी सॉन्ग इज वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज़ दिस इज माय थर्ड सॉन्ग विद वरुण धवन, एंड यू कैन से माय फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सॉन्ग वाज बद्री की दुल्हनिया, फीचर्ड ऑन वरुण. एंड then tantanata tantantara was super hit, and
right.
People are saying this one is also going to be a, you know, super hit song. So I'm so excited because Varun jo energy carry karte hain, unki energy ko match karna is very difficult, and I'm so lucky that Varun personally love my voice, and he always says people to I need Dev in that song. So you know, I'm so lucky.
Right. और जैसे मैंने आपको पूछा कि इसके पीछे की ताकत और राज, तो आई सेड कि भगवान है, लाइक यू नो, भगवान तो डेफिनेटली है, उसके साथ हमारी जो हार्डवर्क है, दैट वुड बी द मेन ताकत एंड द राज बिहाइंड दिस.
यस यस,
भगवान की दुआ है.
अगर 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 बंदा कुछ करेगा ही नहीं, सोचेगा कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, जब मेरा टाइम आ गया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है. भगवान उसको पुश करता है, और जब पुश करता है तो ऐसा पुश करता है कि वो बहुत अच्छा वाला पुश होता है.
राइट. अपना टाइम आएगा नहीं, लाना पड़ता है वो. इन शॉर्ट,
लाना पड़ता है.
वेरी करेक्ट. राइट. और हाल ही में आपका जो नया सॉन्ग है तेरी भाभी फ्रॉम कुली नंबर वन, जो आपने कहा कि आपने वरुण धवन के, लाइक वरुण धवन इज फीचर्ड इन दैट सॉन्ग, तो आप उस जर्नी के बाद क्या कहोगे, बिकॉज़ उस जर्नी के बारे में आप क्या कहोगे, बिकॉज़ आई थिंक डेफिनेटली वो सॉन्ग में बहुत सारी एनर्जी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा व्हेन यू वर रिकॉर्डिंग दैट सॉन्ग.
करेक्ट. एक्चुअली जो इसके कंपोजर हैं, जावेद मोहसिन, दे आर ए वेरी फैंटाबुलस, वेरी फैंटास्टिक कंपोजर, एंड वेरी गुड फ्रेंड. दे आर लाइक ब्रदर टू मी. एंड द लिरिक्स राइटर दानी साबरी, ही इज अमेजिंग सिंगर ऑल्सो, ही इज अ वेरी गुड राइटर. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस इज माई सेकेंड सॉन्ग विद अपने डेविड सर के साथ, दिस इज माई सेकेंड सॉन्ग. तो इतने पुराने डायरेक्टर जिनको हम बचपन में, जब मैं पैदा भी नहीं होता तब से वो पिक्चरें बना रहे हैं, और अभी तक वो पिक्चरें बना रहे हैं. और कुली नंबर वन जब आई थी तब मैं कितने, 4-5 साल का होंगा, 5-6 साल का होंगा. तो तब जब मैंने बात बड़ी होगी पिक्चर देखी, तो उसकी जो क्या कल्ट मूवी वो बनी है, और उससे उसके बाद कितने इतने सालों बाद वो मूवी फिर से बन रही है। तो एक पहली वाली कूली का एक बहुत बड़ा ऑरा लेके तो सब लोग चल ही रहे कि अब इसमें ज्यादा मेहनत इस पिक्चर को उससे बेटर या उसके मुकाबले में लाना इज अ वेरी गुड वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसमें डेविड सर का 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 जादू है कि वो लोगों को इतना गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैंने उनके साथ काम किया। और फाइनली जब बात होती है वरुण धवन की, तो वरुण धवन मैंने बताया जैसे कि जब भी कोई कंपोजर जाते हैं तो वो उनको मेरा नाम सजेस्ट भी करते हैं कि एक बार इस गाने को देव से भी गवा के देखते हैं कि कैसा ऐसा करके। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, क्योंकि बद्री हम लोगों ने सुपर हिट दिया, देन टन टन अटन सुपर हिट दिया, एंड फाइनली आई गॉट भाभी सॉन्ग। सो लोग पसंद करते हैं हमारी जोड़ी को, हमारे कॉम्बिनेशन को, और मुझे यहाँ तक कि काफी सारे मैगजीन्स में मुझे टैग करते हैं बद्री बॉय, बद्री बॉय, बिकॉज बद्री वॉज माई लाइफ चेंजिंग सॉन्ग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेरा और वरुण का, तो ये भी एक ऊपर वाले ने एक बना के दिया है कि यार देव की आवाज उस पर बहुत जमती है, देव की आवाज उस पर बहुत जमती है।
वेरी ट्रू.
तो कंपोजर भी जब वरुण के लिए गाने बनाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी फर्स्ट चॉइस मैं ही रहता हूँ कि यार देव आके गा दे यार प्लीज, ऐसा ऐसा ये वाली बात हो जाती है ना।
सही सही. तो आप तो हिट मशीन बन गए
जी
वरुण धवन के लिए.
अच्छा
और नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा आपके लिए कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है इंडस्ट्री में थोड़ी सी कामयाबी पे बहुत उछल कूद जाते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, भाई मैं स्पेशल हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ. और एक साइड पे आप हो कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, यू आर वेरी काम कंपोज. तो वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड, टेल मी, वॉट कीप्स यू ग्राउंडेड, यू आर सो वेल मैनर्ड.
बिकॉज आई एम सो सो थैंकफुल टू यू एंड सो स्वीट ऑफ यू, यू आर सेइंग दैट। सो मैं मेरा ये मानना है, उसके पीछे मेरा ये मानना है ना कि ये जो वक्त होता है ना, वक्त किसी का सगा नहीं होता। वक्त कभी भी चेंज हो सकता है, आज अच्छा है कल बुरा, कल बुरा कल आज परसों अच्छा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वक्त पे इंसान को इंसान बन के ही रहना चाहिए। अगर तुम्हारा वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा हो तब भी आप इंसान बन के रहिए। कुछ बुरा हर्ट करते हो और किसी को नीचा दिखाते हो तो आपका जब डाउनफॉल आएगा तो पीपल विल से देखा ऐसा करता था एंड आप इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आई एम फ्रॉम अ लिटिल विलेज फ्रॉम उत्तराखंड। एक नेचर का जो एक प्रभाव है वो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं पहाड़ों में पला बड़ा हूँ बचपन से, और पहाड़ों से मेरा बहुत लगाव है। मेरी स्कूलिंग भी पहाड़ों में हुई है, मेरा जन्म भी उधर हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है बिकॉज ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ हिल्स, बिकॉज ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। पहाड़ों को घर, भगवान का घर कहा जाता है।
घर कहा
तो वो
जाता
कहीं ना
है.
कहीं मेरे अंदर वो थोड़ा सा एक असर है, एक क्या बोलते हैं चीजों को समझने का, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहने का, कि
जज्बा है वो.
हाँ वो मेरे अंदर है, वो फील है किसी के दुख दुख को समझने का, या किसी के या अपनी कामयाबी पे इतनी इतना ना इतराना। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अभी मेरा भाभी आया तो व्हाट इज नेक्स्ट, मैं क्या सीख रहा हूँ अलग, मुझे और क्या करना है जिंदगी में, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, कि मुझे सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे कुछ और इस दुनिया में रह के मुझे सारी चीजें, जितने चीजें मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो क्या बोलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, चाहे वो कुकिंग है, और चाहे वो मेरा एक बीच में एक ख्वाब था, मतलब मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि जैसे मैं इंडिया के इंटीरियर्स में जाके, वेरी वेरी इंटीरियर्स क्षेत्रों में जाके जहाँ बिजली पानी नहीं है अभी तक, वहां जाके वहां के लोगों से मिलूं, उनका फोक याद करूं, उनसे उनका फोक सीखूं, फिर उसको उनके साथ वो कैसा खाना खाते हैं उनके साथ खाना खाऊं, वही डिश मैं सीखूं, फिर मैं बनाऊं, फिर उनके साथ गाने का कोलैब करूं। तो ये मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट, आप मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट इसको समझ सकते हैं। तो ये मेरा ऐसे ऐसे चीजें मैं सोचता हूँ करने की इन फ्यूचर। तो ये सब चीजें हैं जो एक पूरा कंबाइन होके एक इंसान को बनाती हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि यही एक कारण है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं।
राइट लाइक बहुत अच्छी सोच है आपकी. एंड जैसे कि आपने आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा कि यू वांट टू गो टू द इंटीरियर्स और वहां पे जाके उनको एक्सप्लोर करना है. आई थिंक नोबडी मस्ट हैव थॉट अबाउट दिस. बहुत लाइक आई थिंक यू मस्ट बी वन ऑफ द पर्सन हु हैज थॉट अबाउट इट. तो आई थिंक डेफिनेटली आई आई फील कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपकी ड्रीम.
टचवुड
वेरी ट्रू,
टचवुड यार।
टच वुड डेफिनेटली. एंड द अदर थिंग इज दैट कि हैज यू टोल्ड मी कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्कूलिंग हुई है, आपका जो जन्म हुआ है वो पहाड़ों पे हुआ है, एंड दैट्स द रीजन समवेयर यू हैव दैट एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स. तो आपकी ये शुरुआत कैसे हुई बॉलीवुड में, कि ऑलरेडी पहले से ही दिमाग में था कि नहीं मुझे वही बॉलीवुड में जाके सिंगर ही बनना है, या फिर व्हाट वाज,
हाँ,
थोड़ा उसके बारे में बताओ.
ये था मेरा। मैं जब काफी छोटा था, मुझे अभी तक याद है, मेरा कजिन और मैं स्कूल से घर जा रहे थे, तो
ओके
हम अमिताभ बच्चन और हम धर्म जी के बहुत बड़े फैन थे। उस टाइम पे दूरदर्शन आया करता था बस, और कोई चैनल नहीं आता था।
राइट
तो
राइट
शोले पीछे शोले पीछे पिक्चर आई हुई थी कुछ दिन पहले, तो हम मेरा जो कजिन था वो गाना गा रहा था, ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम अगर तेरा हाथ ना छो, ऐसे गा रहा था बचपन में। तो मैंने कहा नहीं, छोड़ेंगे दम अगर, तो जबकि कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पापा आर्मी में हैं और दादाजी फार्मर थे, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट वो नेचुरली मेरे अंदर ऐसा आया कि, और मुझे अभी तक याद है, उसके बाद मेरे मन में एक वो था कि यार मुझे ना, मैं कर सकता हूँ, मैं गाने गा सकता हूँ, बट मैंने इतना, मैं शायद था कि मैंने किसी को बताया नहीं जब बहुत ही छोटा था। तो उसके बाद क्या हुआ, गाँव में रामलीलाएं जो होती हैं, गा के होती है, हमारे जो उत्तराखंडी जो रामलीला होती है उसमें हम गा के परफॉर्म करते हैं, और वो भी राग बेस्ड, पूरा रागों पे होते हैं, वो राग भोपाली, राग यमन, उस
राइट
पे चौपाइयां गाते हैं हम। तो वो रामलीला में जब मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो तब से मेरा जो एनर्जी था थोड़ा सा और डबल हो गया, क्योंकि मुझे चार लोगों ने बोला कि यार तुम तो बड़े अच्छा गाते हो। फिर मुझे सीता का रोल मिला, मैं बहुत छोटा था तब, मैं 12 10 11 साल का था जब मुझे सीता का रोल मिला। और फिर एक दो साल रामलीला करने के बाद, फिर वहां के कल्चरल कुछ इवेंट होते थे उनमें थोड़ा बहुत गाना गुना शुरू किया, तो घर वालों को भी लगा कि यार ये तो अच्छा कर रहा है। और फिर मैंने उस दौरान, जब मैं 12th में था, तो मुझे 100% श्योर था कि मैं फेल होने वाला हूँ इस साल, क्योंकि उस ईयर मैंने मैंने जो संगीत को दिया है ना,
राइट.
और एक तो मैं पढ़ रहा था, मेडिकल पढ़ रहा था, और मुझे आता कुछ था नहीं, और मैंने उसके लिए कुछ वो जो प्री पेपर्स होते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं उसको,
हाँ,
जो
मॉक
पिछले
पेपर्स एंड
पेपर्स
ऑल,
होते हैं
मॉडल
उनका,
पेपर्स.
हाँ, मॉडल पेपर्स, तो मैंने एंड एंड में सर मैंने पूरे उसमें मॉडल पेपर्स लेके उनका एक पूरा बुक, हर हर क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का एक एक बुक लेके उसमें से सब कॉमन क्वेश्चन निकाल के मैंने उतना ही पढ़ा है। उसके अलावा मैं, क्योंकि मेरे पास 1 महीना था, मैंने उतना ही पढ़ा, और उतने में ही मैं उतना ही पास हुआ जितना पास होना चाहिए था। अगर एक भी नंबर मेरा इधर उधर होता तो मैं फेल हो जाता था।
अरे अरे अरे
तो
अरे.
क्योंकि हाँ, तो और आज तक, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज मुझे 15 16 साल हो गए हैं 12वीं किए हुए,
राइट.
मुझे आज तक सपना आता है कभी कभी, महीने 2 महीने में, कि मैं 12वीं में फेल हो गया हूं।
अरे बाप रे. तो मतलब वो
इतना
डर अभी
इतना
तक
ज्यादा,
बरकरार है.
अभी तक क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मैं पास होऊंगा
अच्छा
कभी।
राइट.
और क्योंकि उस टाइम पे मेरा रुझान म्यूजिक की तरफ ऐसा हो गया था कि ऐसा दिन में 7 7 8 8 घंटे मैं गा रहा हूँ, मतलब बस
अरे बाप
स्कूल से
रे.
आने के बाद, शाम से रख के रात में 1 2 बज जा रहे हैं, बस गा रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ, वो भी खुद से ही, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं, खुद से ही, क्योंकि कोई बैकग्राउंड ही नहीं ना वहाँ पे उसका, म्यूजिक का। तो
राइट
शिव
राइट
टेम्पल पे बचपन में मंजीरा बजाया करता था, तो वहीं से मुझे लगता है कि शिव जी का एक आशीर्वाद था मेरे ऊपर।
डेफिनेटली
और
डेफिनेटली.
फाइनली जब 12th के बाद सब लोग, कुछ कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई MBBS करता है, या कोई आर्मी की तैयारी करता है उस ऑफिसर्स की, तो मैंने जब बोला घर वालों को कि मुझे सिंगर बनना है, तो बोलो यार क्या कर रहे हो तुम भाई, सिंगर कुछ क्या होता है ये। तो मैंने उनको समझाया कि देखो मैं ऐसा करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, जैसे टीचर होते हैं, गणित के टीचर हो गए, हिंदी के टीचर हो गए, तो
राइट.
वैसे ही मैं ऐसे आगे चल चल के धीरे, पहले BA करूंगा, फिर MA करूंगा, फिर MPhil करूंगा, PhD करूंगा, फिर एक दिन मैं टीचर बन जाऊंगा। तो इस बात को लेके मैंने कन्विंस किया, वैसा मैंने करना था नहीं, ये बनना मुझे प्लेबैक सिंगर ही था,
हाँ.
बट उनके उनके दिल को सांत्वना पहुंचाने के लिए मैंने ये बात की, तो उन्होंने बोला चलो करो यार, करो तुम।
हाँ
तो फिर वहां से मेरा प्रस्थान हुआ जलंधर शहर में। वो भी एक रीजन है क्योंकि मेरे बड़े सिस्टर वहां पे रहते थे, मेरे जीजा जी आर्मी में, मैंने बताया ना मेरी आर्मी में, मेरे जीजा जी आर्मी, मेरे चाचा आर्मी, मेरे दादाजी
राइट
आर्मी में, मेरे मामा आर्मी में, मैं सब आर्मी बैकग्राउंड है अपना।
राइट
तो हाँ, तो वहां पे उनकी पोस्टिंग थी, तो लकीली मैं, मुझे जलंधर शहर मिला क्योंकि वहां पे म्यूजिक का गढ़ है, वहां पे म्यूजिक मतलब म्यूजिक के घरानेदार लोग रहते हैं।
राइट
ये
राइट
भी एक, मुझे लगता है कि एक पूरी साजिश मेरे को बनाने
साजिश
के लिए,
राइट
हाँ एक पूरा मुझे बनाने के लिए भगवान ने पूरा रचा गया, ऐसा मुझे कभी
रचा
कभी
गया था।
नजर में आता है। तो वहां गया, वहां सीखा, मेरे गुरुजी विनोद वर्मा जी से सीखा, और कॉलेज से जो मैंने मम्मी पापा को जो वादा किया था कि मैं बीए की डिग्री लूंगा उससे, म्यूजिक से, तो वहां पे एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स था, जहाँ से सभी, काफी सारे लोग हैं, भारती है, कपिल शर्मा है, सुगंधा मिश्रा है, ये सब उसी कॉलेज के हैं, ये हमारे सीनियर थे सब।
अच्छा
और हाँ, तो वही उस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, एंड वहां से अपनी बैचलर डिग्री खत्म करने के बाद इन 2010 मैं फिर मुंबई आ गया।
अच्छा मतलब जलंधर से
और
आपका आना हुआ मुंबई।
हाँ, मैं जलंधर से फिर यहाँ मुंबई आ गया, और यहाँ भी मैंने, घर वाले बोले कि तू तो पढ़ाई छोड़ दी, अब क्या करेगा ये। मैंने कहा मैं इधर देखूंगा, बट मैं साथ में यहाँ से ना अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एमए का भी फॉर्म भर दूंगा, ऐसे झूठ मूठ बोला उनको
राइट
क्योंकि मैंने वादा वाला किया था उनसे। तो फिर यहाँ आने के बाद तो मुझे स्टूडियोज तक का पता नहीं था कहाँ पे क्या है। मैं रहता था मीरा रोड में किसी दोस्त के घर पे, तो वहां से आना जाना होता था ट्रेन में, धक्का मुक्की, पहले ट्रेन का भी पता नहीं था,
राइट
और
राइट
फिर अंधेरी आते थे, अंधेरी में घूमते रहते थे, ऐसे लोगों से पूछते थे स्टूडियो कहाँ है, वो बोलते चार बंगला जाओ, कोई बोलता इधर जाओ, लोगों के बाहर बैठे रहते थे। फिर धीरे 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 टाइम आगे बढ़ा, एंड 11 गया, 12 गया, 12 में, बट लोग मिलते रहे, लोग मिलते रहे, लोग एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 80, 50, 100, जितना बोल सकते हो आप, लोग मिलते रहे, चाहे वो काम के थे चाहे नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान होने लगी छोटे
होने
लेवल पे।
लगी
हाँ,
थी। राइट राइट
क्योंकि फोकस इसी में था, म्यूजिक
हाँ
करना है। तो फाइनली इन 2013 के आस 12 के आसपास मुझे कुमार जी मिले, कुमार जी जो बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं, कुमार
राइट राइट
जिनके गाने बेबी डॉल सुन लीजिए, या जो भेजी थी दुआ, हेलो
हेलो हेलो देव, आपको
हेलो,
आवाज आ रही है?
हाँ अब आ रही है, उस टाइम पे थोड़ा कट गया था शायद।
राइट, तो मैं कहाँ तक सुना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुमार जी मिले, वहां तक मैं सुना।
हाँ, वहां से, हाँ वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी मुलाकात हुई कुमार जी से, जो कि बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, एज आई सेड, तो उनके थ्रू मैं मेन स्ट्रीम के लोगों से मिलना मेरा शुरू हुआ, मेन स्ट्रीम में जो काम करते हैं, तो उनके लिए स्क्रेचेस गाने शुरू किए 2013 में। उसी दौरान मेरी मुलाकात उन्होंने कुमार पाजी ने कराई चिरंतन भट्ट जी से, जो कि अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्हीं के पिक्चर में, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस में, मुझे एक गाना पहले स्क्रैच के लिए बुलाया था कि देखते हैं कि पसंद आता है कि नहीं, और जब मैंने वो गाया तो लकीली उनको, कंपनी को, कंपोजर नहीं, अपने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सबको पसंद आया, तो वो मेरा पहला गाना इस तरीके से मुझे मिला। बट उसके बाद भी काफी सारे गाने आए, बट बात नहीं बन रही थी, समझ रहे हो ना,
राइट
कि
राइट वो इक्वेशन
एक
नहीं बन
ऐसा
रहा
गाना
था।
नहीं आ रहा था, हाँ कोई इक्वेशन नहीं बन रहा था, कोई ऐसा गाना नहीं आ रहा था कि जिससे मैं नोट 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 हो जाऊं कि कोई आया है मार्केट में। उसके बाद काफी सारे गाने आए, जबकि बड़ी पिक्चरों के भी गाने आए, जिसमें था तनुवर्ट्स मनु का गाना था, हो गया है प्यार तुमसे, बट किसी किसी कारणवश उसका भी प्रमोशन नहीं हो पाया अच्छी तरह। कॉफी पीते पीते फ्रॉम अपना गब्बर इज बैक, मैं तो वो गाना था अक्षय कुमार जी पे, उस गाने का भी, वो गाना जब पिक्चर के सारे गाने बज गए, फिर वो एंड में वो गाना बजा 2 दिन के लिए टीवी पे, तो लोगों ने इंटीरियर्स में और अंडरग्राउंड वो गाना लोग जानते थे कॉलेजेस में या फिर बट वो लाइमलाइट में नहीं आ पाया, कि ऐसे करके खुल के, जैसे होता ना फटाफट पोस्टर निकला हीरो टाइप में, वो गाना बाहर गया।
राइट राइट राइट
तो उससे मुझे लोगों ने थोड़ा बहुत लोगों ने जाना कि हाँ कोई सिंगर आया, बट कुछ हुआ नहीं जिंदगी में। तो फाइनली फिर ऐसे छोटे मोटे करते करते फाइनली इन 2017 आई गॉट माई फर्स्ट सुपर हिट सॉन्ग कॉल्ड बद्री की दुल्हनिया।
बद्री की दुल्हनिया
एंड
राइट,
उसके
वहां
बाद
से फटा पोस्टर निकला हीरो।
वहां से फटा वोशन निकला, हीरो हो गई। फिर उसके बाद स्वीटी तेरा ड्रामा हिट हुआ, उसके बाद ये क्या बोलते हैं स्वीट हार्ट है वो हिट हुआ, उसके बाद टन टन आटन हिट हुआ, उसके बाद ये जितने गाने आपने बताया था मुंबई दिल्ली दिया कुड़िया वो हिट
राइट
हुआ, उसके बाद मार्शमेलो से भी वो हो गई, उसके बाद मैंने शाहरुख साहब के लिए गा दिया बटरफ्लाई गाना फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल में
हैरी मेट सीजल
बटरफ्लाई गाना
राइट।
मुझे गाने के लिए मिला, उसके बाद ट्यूबलाइट में मुझे सलमान खान साहब के लिए गाने का मौका मिला नाच मेरी जान। और उसमें सबसे प्यारा पार्ट बात यह है कि इसके जो फोक लिरिक्स हैं, क्योंकि ये पिक्चर बेस्ड है उत्तराखंड पे, तो इसके फोक लिरिक्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं, मुझे अमिताभ सर ने ब्रीफ दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने वहां के एक पर्व के एक गीत को, गीत नहीं था जो हम बोलते हैं, उसको गीत में ढाल के एक उत्तराखंड के लिए भी मैंने एक मतलब लिखा है उसमें, तो वहां भी मुझे गाने का मौका मिला। तो उसके बाद मेरे सारे अच्छे अच्छे लोग मुझे बुलाने लग गए, द्वार खुल गए और अच्छे कंपोजरों के साथ मैं काम करने लग गया,
राइट राइट
एंड लकीली आई एम स्टिल डूइंग गुड मेरे हिसाब से कि
या
यार
यू आर डूइंग
रजत मुझे
ब्रिलियंट एंड
एक काम
डेफिनेटली वी
काम
ऑल प्रे कि देयर इज लॉट्स मोर टू कम योर वे।
सो
डेफिनेटली
थैंक
डेफिनेटली।
यू।
और
तो
जैसे कि हम कहते
ये था
हैं
मेरा
राइट, एंड
हाँ बोलिए
जैसे कि हम कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, आपने कहा कि आप 2-3 घंटा 8 घंटा कभी कभी रात बजे तो भी, रात हो गई तो भी आप सिंगिंग का रियाज जो आप कंटिन्यू रखते थे, आपने बहुत हार्ड वर्क किया एंड डेफिनेटली इट हैज पेड ऑफ। थोड़ी देर तो जरूर लगता है, पेशेंस परसिवरेंस ये डेफिनेटली आपके अंदर था, आपने वो पेशेंस दिखाया परसिवरेंस दिखाई एंड आई थिंक नाउ यू हैव द ब्यूटिफुल सीन फ्रंट ऑफ यू।
करेक्ट
राइट राइट।
यस
और मुझे एक चीज जानी थी कि जैसे कि आपने कहा कि जब आप मुंबई आए आप मीरा रोड में थे एंड डेफिनेटली आपका स्ट्रगल, योर स्ट्रगल वाज रियल आई वुड से, तो दैट टाइम की आपकी मन की स्थिति क्या थी, व्हाट व्हाट मेड यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग?
मुझे एक्चुअली मैंने ना एक फिल्मी सा तरीका है, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे करना है तो यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात बताऊं क्या होता है, दूसरी बात इंसान को स्मार्ट होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, बट किसी
राइट
किसी मैटर में थोड़ा थोड़ा सा बददिमाग होना भी जरूरी है। अगर मैं इसमें सही बता रहा हूं, अगर आपका स्ट्रगल लंबा है ना तो
हाँ
उसमें आपको थोड़ा बददिमाग भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोच लोगे यार पैसा नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा फ्यूचर में, ये ऐसा नहीं है, और मतलब तुम उससे जेन्युइनली प्यार नहीं करते फिर अपने पैशन से, इसका मतलब ये है, समझ रहे?
राइट
बहुत सारे लोग जो आते हैं करते हैं फिर निकल जाते हैं, यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ, ये होगी मेरी वो होगी, बट तुमने उसमें ये होता है कि अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो तो आपको उसके लिए 24 घंटे सोचना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा 24 आवर्स, और उसके लिए थोड़ा सा मैंने बोला ना बददिमाग होना, इसलिए बोला बददिमाग मतलब उसमें ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाने की, यार क्या मुझे अपने वहां से पैसा आना था नहीं आया, वहां मेरे शो नहीं हो रहे, शिट मेरा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा
राइट, वो
ये सब
ओवर
चीजें
थिंकिंग
नहीं
जो हम
आनी
कहते
चाहिए।
हैं।
हाँ, तो उसमें दिमाग लगाने का ही नहीं मतलब उस चीज में, क्योंकि वो तो करना ही है, जो चीज करना है तो उसमें क्यों दिमाग लगाना फिर ना इतना ज्यादा कि यार मेरा ये नहीं हो रहा मेरा वो नहीं हो रहा। तो ये एक मेरा प्लस पॉइंट था। और दूसरा, जब धीरे 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 कभी कभी जैसे मेरा जब गुबार जब फटा था, जब मुझे लगा था कि यार मेरे गाने आ जाएंगे तो मैं थोड़ा सेट हो जाऊंगा, जब मैंने बताया आपको कि फिर मेरे बड़ी बड़ी पिक्चरों में गाने आ गए, मैंने गा लिया अक्षय
राइट
कुमार जी के लिए गा लिया, उसमें गा लिया, बट उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ यार मेरा मतलब खाली अभी तक, तब भी 4 लोग रहते थे 1 BHK में, अभी भी 4 लोग रह रहे हैं 1 BHK में फ्रेंड्स साथ, बट कुछ कोई 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 तरक्की तो हो नहीं रही जिंदगी में, इतने साल हो गए, तब तक मुझे हो गए थे लगभग 5-6 साल 5 साल, और बड़ा दुख होता था उस दौरान, क्योंकि वो मिडिल पीरियड हो गया था मेरे लिए, उसमें ना मैं जो छोटे छोटे मतलब इन द सेंस जो भजन अगर वगैरह जो छोटे बजट की पिक्चरों के गाने गा सकता था, ना ही मुझे बड़े वाले लोग बुला रहे थे, समझ रहे मेरी बात?
राइट
तो
राइट
वो जो दौर था वो मेरे लिए बहुत ही बहुत ही संभलने वाला दौर था, तो मैंने खुद को संभाला, रोया भी बहुत बार बट संभाला अपने आप को, बट जब मैं मेंटली संभल गया, जब मैंने मान लिया कि चलो करना तो यही है बट अच्छी तरीके से करो, तो
राइट।
फिर
वो ऐसे
मैं गाते
सिचुएशन
रहा
आ जाती
करता
है
रहा
कि
अपना
जहां
काम।
पे बड़ी चीजें भी नहीं मिल रही होती और छोटी चीजें कर नहीं सकते, वो एक कैच आ जाता
हाँ
है।
कर नहीं सकते, यस 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 सर। वहां पे मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी लाइफ में, बट उससे भी मैं फिर निकल गया. और मेरा उस टाइम पे जो साथ दिया ना, फाइनेंशियली जो साथ दिया, वो दिया सीरियल्स ने. जो टीवी सीरियल्स आप देखते हो ना, डेली सॉप जो लोग देखते हैं, उसके टाइटल ट्रैक्स बनते थे. टाइटल ट्रैक्स तो मेरे काफी टाइटल ट्रैक हिट हुए हैं. तो उसमें एक बूंद इश्क था, उसके बाद जब वो हिट हुआ तो उसके बाद काफी सारे मैंने लगभग 15-20 गाए, और तो उसमें अच्छा खासा पैसा मिलता था. तो एक 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 गाने को गा के हम 2-3 महीना सर्वाइव कर सकते थे, रेंट को लेके, खाने को लेके, फोन वगैरह वगैरह सब चीज को करते हुए. तो उसने एक साथ दिया उस टाइम पे फाइनेंशियली. तो टीवी सीरियल्स को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमेशा, और अभी भी मेरे पास आते हैं तो मैं कभी मना नहीं करता, गाता हूँ, जरूर गाता हूँ. और बस वही एक दौर था. एंड फाइनली इन 2017 मैं और तनिष्क तो पहले से दोस्त थे, और हम करते रहते थे स्केच वगैरह वगैरह. बट जब वो तो हिट हो गए थे 2015-16 में, बोलना से हिट हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि देव एक गाना है, और इसमें जो बहुत बड़ा सहयोग है उनका नाम है अजीम दयानी. ही इज अ म्यूजिक सुपरवाइजर अभी, वो मतलब वो म्यूजिक को सुपरवाइज करते हैं. तो उनका और मेरा जो पहला गाना था वो था उंगली पे नचाले, उछोरी उंगली पे नचाले, इमरान हाश की पिक्चर थी वो उंगली. तो वो गाना भी वर्क नहीं किया. तो उस दिन मुझे अजीम ने बोला था, देव अपन एक दिन ना बहुत बड़ा गाना करेंगे, ऐसा करके बिल्कुल वो भी फिल्मी स्टाइल में बोला था उसने. और उसने बोला भी जब मैं आया, उसने मैं जब गाना हिट हुआ कहता, मैंने बोला था ना तेरे को सुपर डुपर हिट गाना दूंगा एक दिन. तो वही वाला, तो दे आर लाइक ब्रदर फैमिली, ऐसा वाला सीन हो जाता है क्योंकि
परिवार हो
अपन रोज
जाता
काम
है।
करते, क्योंकि सब सेम एज, सम हाँ सम सेम एज ग्रुप के, और सब एक साथ नए 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 मतलब नए नए आए हैं, नए नए काम कर रहे हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर टीम वर्क हो जाता. तो उसके बाद कितने, अभी ये जो गाना है ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं, अजीब ने सुपरवाइज किया, तेरी भाभी खड़ी है, और काफी सारे गाने. तो एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है कंपोजर्स में भी, सुपरवाइजर में भी, अपना लिरिक्स राइटर में भी, तो एक फैमिली टाइप बन जाती है. तो वही एक अच्छा बन के रहोगे, अच्छा रिलेशन लोगों से रखोगे, अच्छा इंसान बन के रहोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंडस्ट्री में काम करने से.
क्योंकि इस मोमेंट पे मुझे एक चीज याद आ गई कि एक छोटा बच्चा डैडी को पूछता है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर, इंजीनियर, वो। तो डैडी उसको कहते हैं कि लाइक इस दुनिया में अच्छा इंसान बनो, उसकी कमी है।
सही बात, क्या बात है, क्या बात है, सही
वेरी ट्रू। और
बात.
इसी
एक अच्छा
मोमेंट पे
आका एक
अब बोलिए।
हाँ एक हाँ एक अच्छा मैं तो बोलता हूँ, कोई भी चीज करने से पहले ना, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे व्हाट एवर फील्ड हो, कोई भी फील्ड में रहने से अगर बंदा अच्छा इंसान बन जाए ना, तो उसके आधे दुख तो अपने आप दूर हो जाते हैं,
सही बात, बिल्कुल
ये
सही
मेरा
बात,
कहना है, मानना है.
डेफिनेटली। और इसी मोमेंट पे आई थिंक और एक अच्छा सवाल अगर मैं करूँ तो वो रहेगा सोशल मीडिया के बारे में, कि आजकल ऐसा हो जाता है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने मुझे कहा है कि ओमकार एक चीज़ समझ लो कि अगर तुम कितने सक्सेसफुल हो, अगर तुमको वो मेजर करना है तो अपनी सोशल मीडिया की फॉलोइंग्स देखो, तो उसके ऊपर लाइक कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर मैं कहता हूँ कि देर इज मोर टू इट, सक्सेस इज नॉट ओनली इक्विवेलेंट टू सोशल मीडिया, देर सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अरे सर,
छोटी सी
वही
चीज हो
वही, हाँ
जाती है
बोलिए
सोशल
बोलिए.
मीडिया के बारे में, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में?
देखो, ये देखो, हर चीज अच्छी है, हर चीज के अच्छे भी चीजें होती है, बुरी भी चीजें होती है, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो इंसान कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. अगर मुझे दिन में हर चीज की फोटो डालनी या हर चीज अपने बारे में बताना अच्छा लगता है, तो वो बंदा डालता है और उसको उससे लगता है कि उसे फायदा भी हो रहा है, चलो ठीक है. तो मैं पर्सनली अपनी ये राय दे रहा हूँ कि वो बुरे नहीं है, सब अपने अपने लाइफ जी रहे हैं, उनका खुद का एक अकाउंट है, उनके खुद के फैन है और उनको पसंद भी कर रहे हैं. बट इन माई केस, मुझे जब तक मेरे अंदर से नहीं आता कि मुझे ये चीज डालना चाहिए, मेरे दिल से नहीं आता कि मैं ये डालूं या फिर ऐसे करूं, तो तब तक मैं वो चीजें करता ही नहीं हूँ, कोई भी चीज हो. तो मेरा हार्ट हार्ट का कनेक्शन रहता ही रहता है, कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी नहीं डालूंगा उस पे, कि भाई अरे मैं माइक के होल्डर का रिकॉर्डिंग है, लाइफ इज फलाना ढिम का ये है, ऐसा करके मैं नहीं करता. अगर मुझे लग रहा है उस टाइम पे कि यार कितना ब्यूटीफुल है, जैसे मैं मतलब सब्जियों को देख के ना मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता हूँ, जब मैं बहुत सारी सब्जियां देखता हूँ, मतलब उतना मैं वहां पे, मतलब एक तरफ से लड़कियां जा रही हूँ बहुत सारी, एक तरफ से सब्जियां जा रही हूँ बिल्कुल कलरफुल, तो मैं सब्जियों को देखूंगा क्योंकि मैं फूडी भी हूँ और दूसरा मैं कुक भी हूँ, तो मुझे सब्जियां बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। तो मैं कभी जैसे मैं देखता हूँ तो मैं उनकी स्टोरी बना के डाल देता हूँ, समझ रहे हो? वो मेरे जो जो मेरा पर्सनल जो मैं हूँ, मैं यही दिखाना चाहता हूँ लोगों की कि मैं ऐसा ही हूँ। मतलब मैं लेट बैक हूँ, मैं रोज रोज पोस्ट नहीं डाल सकता, मैं दिन में 4 पोस्ट नहीं डालूंगा, मैं ऐसा हूँ। मतलब मैं अपने आप को जेनुअनली उनको दिखा रहा हूँ कि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, समझ रहे?
ट्रू ट्रू। और आप बहुत सारे कवर्स जो है वो आप रिलीज करते हो सोशल मीडिया पे, और बहुत ही अच्छा रिएक्शन आपका, लाइक लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा आ जाता है वहाँ पे। बहुत सारे फैंस हैं जो पसंद करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते
पसंद
हैं।
कर रहे
तो
हैं।
आप क्या कहोगे उसके बारे में कि वो इंस्पिरेशन,
इसके
वो
बारे
मोटिवेशन
में
कहाँ से आ?
मोटिवेशन, मेरे को, मैं सच बताऊं आपको, मोटिवेशन मुझे लॉकडाउन में मिला जब मैं अपने आप को, खुद को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, म्यूजिक को एक्सप्लोर कर रहा था, फूड एक्सप्लोर कर रहा था। तो तब एक कुछ करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग्स और शोज तो सब बंद थे, तो मैंने एक घर पे ही एक एक वॉल पे मैं रिकॉर्ड करके गाने डालता था, वीडियो और वॉइस करके डालता था। तो लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया, तो फिर लोग, मेरे जो फ्रेंड हैं और फैंस हैं, उन्होंने बोला कि सर आप अभी तो खुल गया है, आप थोड़ा बाहर जाके भी शूट कीजिए, क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे उन चीजों को। तो मैंने 5-6 वीडियो घर से डाली, फिर लॉकडाउन खुला तो फिर मैंने बाहर से शूट शूट करके डालने के लिए, तो लोगों को पसंद आ रहे हैं। और मैं जो गाने ले रहा हूँ वो उन गानों की सिलेक्शन भी बहुत कम है। मैं वो गाने नहीं ले रहा हूँ कि जो हर कोई जिसका कवर बना रहा है, मैं वो गाने ले रहा हूँ जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और जो अपने टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट और आर्टिस्टिक वाइज या फिर साउंड वाइज या फिर फील वाइज बहुत अहम रहे हैं, उन गानों को लेके वो कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, देवनेगी रिविजिटेड करके उसका मैं टैग, उसकी
राइट
टैग लाइन ये
राइट
है, और जिसमें मैं खुद के भी जो गाने हैं, जैसे मैंने लास्ट जो किया था वो स्वीट हार्ट गाना है जो मैंने खुद गाया था केदारनाथ में, अगर उस गाने को मुझे पिक्चर के हिसाब से ना ना गाना हो तो मैं उसे कैसे गाऊंगा, उसका सार रहेगा? तो उसमें, क्योंकि अभी मैं खुद से कर रहा हूँ, तो इसमें सब सोच मेरी आ जाएगी कि मैं उसको ऐसे प्रोग्राम करवाऊंगा, मैं उसे इस तरीके से, इस अप्रोच से गाऊंगा, क्योंकि वो अप्रोच तो लोगों ने सुन ली पिक्चर पे, और अभी जो अप्रोच डालूंगा वो कैसे होगी। तो एक एक्सपेरिमेंटल भी हो जाता है और आपकी बातें भी लोगों तक लगती हैं कि अगर ये गाना करे तो कैसे करेगा।
राइट, देव के स्टाइल में।
देव के स्टाइल में। अभी एक गाना था उनका, सोनू जी का गाना था, सूना सूना देश कहे आ रे, पूरा क्लासिकल ट्रैक है वो। उसमें हमने क्या किया, पूरा वॉइस तो क्लासिकल में है, बट उसका जो पूरा अरेंजमेंट है पूरा हाउस में कर दिया, सिंथ एंड ऑल साउंड में। तो वो उसका जो एक आउटपुट निकलता है ना, वो बहुत ही अलग सुनने में लगता है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल है और हाउस बज रहा है, वो जो जो कि पब में बजता है, जो हाउस म्यूजिक सिंथ हो गया है वो सब, तो एक अलग उसका कॉम्बिनेशन जब निकल के आता है तो लोग अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पसंद करते हैं।
तो एक देव की स्टाइल, एक देव की नजरिया मिल जाती है उसको, वो सारे सॉन्ग को।
हाँ, इसीलिए मैंने उसका नाम, वो टैग नाम ही यही है कि देव नेगी रिविजिटेड। देव नेगी जो कर रहा है वो गाने को फिर से रिविजिटेड कर रहा है, रिविजिट कर रहा है उस
बहुत
गाने
बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके जो
को।
फैंस है उनको भी एक सवाल है कि अभी आपको हम कहाँ पे और सुन सकते हैं? लाइक भाभी हो गया, तो उसके बाद आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है?
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक तो बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं। होपफुली मुझे भी अभी पता नहीं कि कब आने वाली हैं, बट हैं काफी सारी चीजें, बॉलीवुड में हैं, ओटीटी में हैं। बट उसके अलावा जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कुछ सिंगल्स मेरे तैयार हैं पहले से, 5-6 गाने मेरे खुद के तैयार हैं, तो उनकी शूटिंग के लिए अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसकी शूटिंग एंड उसकी एडिटिंग और उसका प्रमोशन कैसे करेंगे वो सब पे काम चल रहा है। एंड होपफुली विद इन अ मंथ और एज सुन एज पॉसिबल आर सॉन्ग विल कम आउट वेरी सुन।
डेफिनेटली, तो आप डेफिनेटली फिर से आओगे हमारे शो पे उस गाने के लिए बात करने के लिए, उनका प्रमोशन करने के लिए। तो
श्योर
ऑडियंस
श्योर
ये
श्योर
ध्यान में रखना कि देव सर फिर से आ रहे हैं अपने अपने शो पे ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड।
हाँ, स्टे ट्यून
और
स्टे ट्यून।
राइट, एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि यू हैव टू गिव मी 3 वर्ड्स, आपको 3 शब्द मुझे देना है टू डिफाइन, टू डिस्क्राइब योर जर्नी राइट फ्रॉम 2010 से लेके 2020 तक, ये जो एक डेकेड हुआ है, अभी हम दूसरे डेकेड में जा रहे हैं, हम दूसरे फेज में जा रहे हैं अभी, तो जाते जाते आप तीन शब्द मुझे दे दो टू डिफाइन, टू डिस्क्राइब 2010 से लेके 2020 तक का जर्नी.
It's a very very beautiful journey for me. It's like a जैसे जिसमें मिर्च मसाला भी है, जिसमें is a combination of थोड़ा 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 कठिनाई एंड फिर पिक्चर एंड होती है इन अ गुड नोट. वैसी वाली पिक्चर है ये, सॉरी क्या बोलते हैं, वैसी वाली जर्नी है जैसे पिक्चरों में होता है ना कि पिक्चर शुरू होती है और पिक्चर में हीरो संघर्ष करते हैं एंड फाइनली हाँ अंत भला तो सब भला, वो वाली स्टोरी चलती है
राइट, बिकॉज़ आई थिंक
अंत भला तो सब भला,
हार्ड वर्क भी है, सक्सेस भी है, एंड आई थिंक सब है इसमें, ये 2010 से लेके 2020 तक, आई थिंक आप भूलोगे नहीं इस साल, ये जो 10 साल है इनको तो
जिंदगी में नहीं भूलूंगा क्योंकि इतने ब्यूटीफुल साल है ना. अगर अगर पीछे जाके मैं झांकूं तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, बट जो मस्ती हमने दोस्तों के साथ की है उस टाइम पे एक छोटे से फ्लैट में रह के, कितना रात रात भर जाग के मस्तियां करते थे, एक छोटे स्टॉल पे जाते थे, खाना खाते थे और बहुत सारा मजाक करते थे और अपने काम को बताते थे कि भाई मैंने आज ये किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा बट देखते हैं ये वो छोटी छोटी जो मेमोरीज है ना वो जिंदगी भर नहीं जा सकती. और वो गोल्डन टाइम भी बोल सकते हो आप उसको ना, गोल्डन टाइम, क्योंकि उसके बाद लोगों की शादियां हो जाती हैं, लोग फिर सेपरेट हो जाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, बट उस टाइम की वैल्यू जब बाद में जब सेपरेट हो जाते हैं तो फिर पता चलती है यार कितना फन करते थे हम लोग, हम कैसे थे, हम क्या 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 करते थे, वो सब चीजें हैं. तो ये लाइफ को सोचने का ढंग है. अगर लाइफ को आप बुरा सोचोगे तो आप बुरा ही होगा आपके साथ, अगर अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा.
वेरी स्वीट. और जैसे कि आपने आपके जर्नी डिस्क्राइब की, डिफाइन की, तो अंत भला तो सब भला, तो हम कहते हैं कि ये पॉडकास्ट का भी अंत हम बहुत अच्छा करते हैं. आप फ्यू लाइंस, एक चार पांच लाइंस आप गा सकोगे फ्रॉम तेरी भाभी?
जी जी श्योर श्योर
डेफिनेटली प्लीज.
अब मुझे थोड़ा इशू आ रहा लिरिक्स का, तो मैं खाली हुक लाइन गाता हूँ.
चलेगा.
मैं समझ ही गया था ये बात कुछ बड़ी है, और बात कुछ बड़ी नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है. अरे हट जा सामने से, हट जा सामने से, मेरी अखियां लड़ी है, हट जा सामने से, तेरी भाभी खड़ी है, हट जा सामने से, मेरी अखियां लड़ी है.
अरे वाह वाह वाह, क्या बात, बढ़िया. बहुत बढ़िया देव. एंड डेफिनेटली देव की ये जो हमने बातें कही, लाइक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन, जहाँ पे हम लोग ने राइट फ्रॉम योर बर्थ, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड से लेकर आपका स्ट्रगल तक का, तो आपकी सेलिब्रिटी, आपका स्टार्डम तक का, हमने सारी बातें की है. आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन हुआ है, एंड आई डेफिनेटली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर बींग ऑन हाउस ऑफ जो सीजन 2. डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आपसे
उनका, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर.
मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला.
आपका बड़कपन है भाई.
नहीं नहीं सच में. श्योर देन, एंड थैंक यू सो मच देव वंस अगेन. ऑलराइट,
थैंक यू ओमकार. होपफुली जल्दी मिलते हैं.
पक्का, डेफिनेटली. Sure. And all the beautiful audience of House of Joe season 2. Today we were in conversation with Dev Negi, who has given such beautiful hits for the hit pictures in Bollywood. And definitely he's a megastar. He's a bona fide singer. So keep listening to House of Joe season 2, your unbounded dose of Josh in association with Panout Media. Till then, do like, share, comment, subscribe. And don't forget your daily dose of Josh. House of Joe season 2. Thank you.